बजय कुंज बिहारी राधा जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धाम जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धाम जय यशोदनंदन जय ब्रज जन रंजन जय यशोदनंदन जय ब्रज जन रंजन जय यमुना तीरा बनचारी जय कुंज बिहारी जय यमुना तीरा बनचारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा जय माधव जय कुंज बिहारी नितय गौर हरि बोल जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सहस्री श्रीमधीश डिवाइन ग्रेस अभयचरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाख गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय श्री श्री गौनताई की जय श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय समवेत भक्त वृंद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय गौर प्रेमानंदी। All glories to Simran devotees, all glories to Simran devotees, all glories to Simran devotees. All glory to Sri Guru and Gauranga. तो आप लोगों के पास गीता है सबके पास या किसी के पास नहीं है? अच्छा, तो फिर दूसरे अध्याय का 31वां श्लोक है, तो सबने निकाल लिया दूसरे अध्याय का 31वां श्लोक, पेज नंबर 80। या पहले मंगलाचरण कर लें? ठीक है, मेरे साथ बोलिए। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्री गुरुं श्रीयुतपदकमलम् श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वांछा कल्पितरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा सुन्नवादी पाश्चात देश तारिणे। अब निकालिए कितना पेज नंबर है? 80 निकालिए। अच्छा, एक शिष्टाचार की बात मैं आपसे बताना चाहता हूँ। कुछ भक्तों को जो है मैंने देखा कि जीभ में जो है उंगली लगा करके पेज जो है पलटते हैं, है ना, तो ये ठीक नहीं है, है ना। वैष्णवों के लिए जो है वैसे भी अगर हाथ जूठा हो गया तो हाथ धोना चाहिए, ठीक है ना। किसी कारण से भी अगर हाथ अगर आपने जूठा कर दिया है तो हाथ धोइए। जब तक आप हाथ नहीं धोते हैं तब तक इन पुस्तकों को नहीं छूना चाहिए। फिर जीभ में जो है उंगली लगा करके फिर पन्ने पलटना ज़्यादा मतलब अनुचित है ना। तो ये जो है आप सबको बताइए, मैंने आपको इसलिए बताया है, अगर आप जानते हैं तो दूसरों को भी बताइए, क्योंकि ये एक सामान्य शिष्टाचार है, ठीक है ना, है ना। तो इस श्लोक संख्या 31 सबने निकाल लिया, मेरे पीछे बोलिए। स्वधर्मम अपि चावेक्ष नाविकम्पितुम् अर्हसि धर्म्याधियुद्धात्रेयो यत्क्षत्रियस्य न वेद्यते। अनुवाद पढ़िए, कौन पढ़ेगा?
क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कारण नहीं है, तथा तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं।
किसका बच्चा है? तुम बाहर ले जाओ। किसका बच्चा है? अच्छा, अभी आप श्लोक पर आइए, अपना ध्यान श्लोक पर लाइए। भगवान क्या कह रहे हैं? स्वधर्मम अपि च अवेक्ष, अपि का मतलब भी। तो भी शब्द का प्रयोग भगवान यहां कर रहे हैं, क्यों? कि कुछ दूसरी बात बोल रहे हैं। युद्ध करने के पक्ष में भगवान ने कुछ कारण बताए थे, लेकिन अब ले जाओ। हाँ, सुन ले सब लोग। सुधर्म के युद्ध करने के पक्ष में भगवान ने कुछ कारण बतलाए थे, लेकिन अब उस पक्ष में कुछ दूसरे भी कारण बता रहे हैं। एक दूसरे भी कारण भगवान बता रहे हैं, दूसरा कारण भी बता रहे हैं कि इस कारण से भी तुम युद्ध से जो है तुम्हें छोड़ने की जरूरत नहीं है, युद्ध से मतलब डरने की जरूरत नहीं कि इसमें पाप हो रहा है ना। ये कारण तो भगवान ने पहले अभी तक 30वें श्लोक में जो बताया कि तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न तुम सोचो तुम्हारसी, है ना। तो 30वें श्लोक में भगवान ने ये जो है अंतिम जो है श्लोक है ये, इस कारण से तुम्हें युद्ध मतलब करना चाहिए, तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए कि आत्मा नष्ट नहीं होता, आत्मा नहीं मरता। देही नित्यम अवध्योयम, आत्मा का वध नहीं होता, है ना। तो एक तो ये कारण था कि भगवान ने कहा कि तुम युद्ध से विमुख मत हो, है ना। लेकिन फिर एक दूसरा भी कारण अर्जुन का, मतलब अर्जुन ने विचार किया, अर्जुन ने मन में प्रश्न किया, भगवान से सीधे नहीं किया कि ठीक है कि आत्मा का वध नहीं होता है, लेकिन फिर मुझे पाप तो लगेगा, है ना। तो युद्ध में जो है मतलब ठीक है, मैं मतलब शत्रुओं को मारूंगा या जो अपने संबंधी उनको मारूंगा तो उनका वध तो नहीं होगा, आत्मा का तो वध नहीं होगा, लेकिन फिर अधर्म तो होगा। तो अब भगवान जो है अधर्म की दृष्टि से धर्म धर्म का विचार करते हुए भगवान कह रहे हैं कि तुम्हें युद्ध छोड़ने की आवश्यकता नहीं है ना। ये बहुत जरूरी है, धर्म का विचार करना बहुत जरूरी है। तो भगवान कह रहे हैं सुधर्मम अपि चावेक्ष, अपना सुधर्म, अपना धर्म, सुधर्म। जहां तक धर्म की बात है तो धर्म का इतना व्यापक है, धर्म का जो अर्थ है इतना व्यापक है कि किसके लिए धर्म, किसका धर्म। तो धर्म जो है सबके लिए अलग अलग होता है। तो आपके लिए हो सकता है कुछ दूसरा धर्म हो, मेरे लिए कुछ दूसरा धर्म हो। तो सुधर्म का मतलब है अर्जुन के, अर्जुन का जो सुधर्म है उसको देख करके भगवान कहते हैं ना विकंपित महर्षि, तुम्हें कंपित होने की आवश्यकता नहीं है, कांपने की जरूरत नहीं, तुम कांप रहे हो कि हम बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं, है ना। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि तुम कांप रहे हो कि तुमसे बहुत बड़ा पाप हो रहा है, लेकिन जो जहां तक तुम्हारा सुधर्म की बात है पाप तो है अपने अहोबत महत पापम करतुम विपसिता वयम, कि हम बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं, यद राज सुख लोभिन हंतुम, अपने सुजन और संबंधियों की हत्या कर रहे हैं राज सुख के लोभ से, बहुत बड़ा पाप है। लेकिन भगवान अब यहां पर कहें सुधर्म कि इस स्थिति में, इस समय और इस जगह जो तुम्हारा धर्म है वो अब क्या है, युद्ध करना। इसलिए भगवान ने सुधर्म शब्द का प्रयोग किया, सुधर्म। ये जो है मतलब पाप है और बहुत बड़ा पाप है कि राज्य के लिए सब अपने शूद्रों की हत्या करना बहुत बड़ा पाप है। लेकिन जहां तक तुम्हारी स्थिति इस समय इस जगह है और विशेष रूप से तुम्हारे लिए जो तुम्हारी परिस्थितियां हैं उनके अनुसार तुम्हें पाप नहीं लग रहा है, तुमको कांपने की जरूरत नहीं है कि तुम पाप कर रहे हो। न विकंपितुम अर्हसि, तुम विशेष रूप से कंपित हो रहे हो तो विशेष रूप से कंपित होने की जरूरत नहीं है, इतना कंपित होने की जरूरत नहीं है, कांपने की जरूरत नहीं है भगवान के। न विकंपितुम अर्हसि धर्म्याधि धात्रियो नक्षत्रियस्य न विद्यते, क्योंकि यहां तो धर्म युद्ध है। यहां क्या है, तुम राज्य सुख के लिए युद्ध नहीं कर रहे हो कि इनकी हत्या नहीं कर रहे, तुम राज्य सुख के लिए तुम धर्म के लिए युद्ध कर रहे हो, धर्म की रक्षा के लिए युद्ध कर रहे हो। तो यहां भगवान कह रहे हैं धर्म्याधि धात्रियो नक्षत्रिय से न वेदते, क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर के तो कल्याण कुछ भी नहीं। जहां अर्जुन सोच रहे हैं कि सबसे ज्यादा बड़ा पाप कर रहे हैं वहां पर भगवान क्या कह रहे हैं, सबसे बड़ा धर्म, इससे बड़ा धर्म नहीं है क्षत्रिय के लिए, श्रेय धर्म युद्ध से बढ़कर के कल्याण क्षत्रिय के लिए कुछ भी नहीं। तो भगवान ने देखो कितना बिल्कुल विरोध कर दिया ना अर्जुन के बात का, कितना मतलब पूरा का पूरा विरोध कर दिया। जहां अर्जुन कह रहे हैं कि बड़ा पाप है, इससे बड़ा कोई पाप नहीं जो हम कर रहे हैं, वहां भगवान कह रहे हैं इससे बड़ा कोई कल्याण नहीं जो तुम कर रहे हो, धर्म युद्ध से बढ़ करके क्षत्रिय के लिए कोई और कल्याण है ही नहीं भगवान कह रहे हैं, है ना। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी की जो है कुछ हम शब्द पढ़ेंगे शुरू से, तो आप देख रहे हैं तात्पर्य में सामाजिक व्यवस्था के चार वर्णों में द्वितीय वर्ण उत्तम शासन के लिए है। द्वितीय वर्ण, पहला वर्ण कौन सा होता है, ब्राह्मण, और दूसरा वर्ण, तीसरा वर्ण, और चौथा वर्ण शूद्र, है ना। तो द्वितीय वर्ण उत्तम शासन के लिए है और क्षत्रिय कहलाता है। दूसरा वर्ण छत का अर्थ है चोट खाया हुआ, जो क्षति से रक्षा करे वो क्षत्रिय है, है? जो चोट खाए उसकी रक्षा करे उसको क्षत्रिय कहलाते हैं, उसको क्षत्रिय कहते हैं, है ना। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, धर्म को क्षति पहुंचा रहे हैं, है ना। तो तुम धर्म की रक्षा करने के लिए क्या कर रहे हो, युद्ध कर रहे हो, क्षत्रिय जो धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करे। आगे श्लोक संख्या 32। अच्छा, समय के लिए कोई घड़ी नहीं यहां सामने है? आठ ग्यारह कितने बजे तक करना है, 9 बजे तक करना है, ठीक है 8:11। अच्छा, श्लोक संख्या 32 मेरे पीछे बोलिए। यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्ग द्वारम अपावृतम सुखिनः क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। अनुवाद कोई माता जी पढ़िए। अब भगवान क्या कह रहे हैं, यदृच्छया च उपपन्नम, यदृच्छया का मतलब है अपने आप बिना किसी प्रयास के क्या तुम्हें प्राप्त हुआ है, ऐसा युद्ध प्राप्त हुआ है। भगवान जो है कितना मतलब गहराई से बता रहे हैं कि ये तो तुम्हारे लिए इतना कल्याणकारी अवसर है और ये तुमको प्राप्त हुआ है बिना प्रयास के, तुमने प्रयास नहीं किया, बल्कि भगवान ने भी प्रयास किया था युद्ध ना हो, युद्ध ना होने के लिए भगवान ने प्रयास किया था, है ना। लेकिन ये फिर भी प्राप्त हुआ है तो सौभाग्य की बात है। भगवान कह यदृच्छया च उपपन्नम, इन्हें प्राप्त हुआ स्वर्ग द्वारम, स्वर्ग का द्वार है, अपावृतम, खुला हुआ स्वर का एक खुला हुआ द्वार है, भगवान कह रहे। अब वैसे तो गीता में मतलब जो है स्वर्ग की प्राप्ति ये कोई लक्ष्य नहीं है भगवत गीता का, लेकिन भगवान जो अभी उपदेश का प्रारंभ कर रहे हैं कि कम से कम स्वर्ग की प्राप्ति तो होनी ही है इस युद्ध में, स्वर्ग की प्राप्ति तो कम से कम होनी ही है, है? जहां अर्जुन सोच रहे हैं कि नरके नियतम वास हो, नरक में ही प्राप्त, नरक में ही वास होगा और अनियत काल की कब तक नरक में रहना पड़ेगा कुछ पता ही नहीं है अनिश्चित, वहां पर भगवान कह रहे हैं कि स्वर्ग की प्राप्ति तो कम से कम है ही, स्वर्ग से कम तो है ही नहीं, और स्वर्ग की प्राप्ति की इच्छा नहीं है तो भगवान की प्राप्ति होगी, वैकुंठ की प्राप्ति होगी, है ना। तो भगवान तो ये मतलब यहां बता रहे स्वर्ग द्वारम अपावृतम, स्वर्ग तो बिल्कुल खुला हुआ है। अगर आप जो है मतलब और ज्यादा कोई लक्ष्य आप नहीं चाहते हैं कि मनुष्य जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य क्या है, आप नहीं जानते, आप नहीं सोचते हैं और युद्ध करते हैं, हैं? और युद्ध में मर जाते हैं तो क्या होगा, स्वर्ग तो मिलना ही है। स्वर्ग द्वारम अपावृतम, अपावृतम का मतलब बिल्कुल खुला, कोई रोक टोक नहीं। जैसे त्रिशंकु राजा थे वो स्वर्ग पाना चाहते थे, स्वर्ग जाना चाहते थे इसी शरीर से, तो विश्वामित्र जी ने उनको भेज दिया स्वर्ग, और इंद्र ने जो है मतलब कहा कि नहीं स्वर्ग नहीं आ सकते आप, आप स्वर्ग में नहीं आ सकते, इस शरीर से स्वर्ग में नहीं आ सकते, आपको चांडाल का शरीर प्राप्त हुआ है तो चांडाल के शरीर से आप स्वर्ग नहीं आ सकते। तो बीच में लड़क गए त्रिशंकु, लड़क गए, अब ना नीचे आ सकते ना, है ना, ना स्वर्ग जा सकते ना पृथ्वी आ सकते, लड़क गए, तो वो जो है स्थिति नहीं है। भगवान क्या कह रहे हैं इस युद्ध में स्वर्ग का एकदम खुला हुआ द्वार है, कोई रोक टोक नहीं होगा कि कोई गेट में जो है मतलब आपसे पूछताछ करेगी कहाँ से आ गए, क्यों आ गए, है ना, और तलाशी ले लेंगे, कोई तलाशी तलाशी लेने वाला नहीं है सीधे। स्वर्ग द्वारम अपावृतम सुखिना क्षत्रिया पार्थ, सुखी या भाग्यशाली क्षत्रिय लभन्ते युद्धमिद्रसम, ऐसा दो युद्ध प्राप्त करते हैं। तो प्रभुपाद के तात्पर्य में जो है थोड़े से शब्द हम शुरू से पढ़ेंगे। विश्व के परम गुरु भगवान कृष्ण अर्जुन की इस प्रवृत्ति की भर्त्सना करते हैं, भर्त्सना मतलब आलोचना, निंदा, निंदा करते हैं अर्जुन की इस प्रवृत्ति की, निंदा करते हैं। विश्व के परम गुरु भगवान कृष्ण अर्जुन की इस प्रवृत्ति की निंदा करते हैं जब वे कहते हैं, कहता लिखा है, कहते हैं अर्जुन के लिए हम सम्मान सूचक प्रयोग करेंगे, अर्जुन के लिए वे जब वे कहते हैं कि उन्हें इस युद्ध में कुछ भी तो लाभ नहीं दिख रहा है, इसे नरक में शाश्वत वास करना होगा, है ना। अर्जुन द्वारा ऐसे वक्तव्य केवल अज्ञान जन्य थे, है ना। तो यहाँ जो है मतलब भगवान अर्जुन के इस विचार की निंदा कर रहे हैं भगवान, और जब भगवान निंदा करें तो फिर सचमुच मतलब गलत ही है, है ना। फिर ये नहीं हो सकता कि नहीं नहीं है, हमारा विचार ये है, इनका विचार ये, उनका विचार, क्योंकि भगवान का जो विचार है वो मतलब सर्वोच्च है और वो सुप्रीम कोर्ट का जैसे निर्णय होता है, है ना। हरि बोल। सुप्रीम कोर्ट का जैसे निर्णय होता है, हाँ क्या कह रहा हूं मैंने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, है ना। तो जो मतलब सर्वोच्च निर्णय होता है भगवान की ओर से, तो उसमें फिर ये नहीं कह सकते भाई मेरे विचार से ये गलत है ये सही है, आपके विचार से किसी के विचार से सही गलत का कुछ महत्व तो नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का अगर ऑर्डर आ गया तो उसके अनुसार कार्यवाही की जाएगी। तो जब भगवान कह रहे हैं कि भगवान ने कहा है कि तुम्हारा जो है ये अज्ञान है, है ना, कि तुम्हें नरक की प्राप्ति होगी, है ना, तो इसको जो है फिर सर्वोच्च सत्य मानना पड़ेगा, जिसमें फिर ये नहीं, नहीं, नहीं मेरा तो विचार ये है, मेरा विचार, आपका विचार, इनका विचार, कुछ महत्व नहीं होता किसी के विचार का, कि भगवान कह रहे हैं समस्त वेदों के ऊपर, समस्त शास्त्रों के ऊपर भगवान के सब निर्णय, है ना। आइए इंस्ट्रक्शन के 33, अथ चेतम धर्म्यम। क्या बात है, आप लोगों की आवाज नहीं आ रही, लगता है खाया नहीं है। अथ चेतम धर्म्यम संग्राम न करिष्यसि तदा स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापं अवाप्स्यसि। बोलो प्रभु जी कोई।
किंतु यदि तुम युद्ध करने से स्वधर्म को संपन्न नहीं करते तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे।
अब देखिए भगवान क्या कह रहे हैं। अथ चेत त्वम इमं धर्म्यम, अथ चेत यदि तुम इमं धर्म्यम संग्रामम, ये धर्मयुक्त संग्राम नहीं करोगे। अगर मान लो तुम कहो कि ठीक है ये युद्ध अगर मैं ना करूं तो इसमें जो है जो मुझे कल्याण मिलना है वो नहीं मिलेगा, है ना, तो दोष भी तो नहीं लगेगा। अब मान लो अर्जुन ये सोच रहे हैं कि ठीक है भाई इस युद्ध से बहुत बड़ा कल्याण मिलने वाला है मुझे, है तो अगर मैं ना करूं तो नुकसान तो नहीं होगा कुछ है? मान लो इतना बड़ा फायदा नहीं हुआ, इतना बड़ा कल्याण जो मिलने वाला नहीं हुआ, तो नुकसान क्या है? नुकसान तो नहीं होगा। तो भगवान क्या कह रहे हैं, नुकसान है। क्या हो गया, एक तो तथा स्वधर्मम कीर्तिम चाहित्वा, तुम्हारा स्वधर्म नष्ट होगा, तुम्हारी कीर्ति नष्ट होगी और पाप लगेगा। हित्वा पापम वापस, पाप लगेगा। अब देखो कितना निर्णय जो है बिल्कुल विपरीत है अर्जुन के विचार से। अर्जुन का विचार है कि युद्ध करने में पाप लगेगा, इनकी हत्या करने में पाप लगेगा, और भगवान कह रहे हैं कि तुम युद्ध ना करोगे तो तुम्हें पाप लगेगा, है ना, पाप लगेगा। क्यों पाप लगेगा अर्जुन को? क्योंकि ये जो है अन्याय कर रहे हैं तुम्हारे साथ, ये तुम्हारे साथ अन्याय कर रहे हैं, है ना, और तुम अगर इनके साथ इनका विरोध नहीं करते, इनके अन्याय का विरोध नहीं करते, तो इनके अन्याय का तुम भी साथ दे रहे हो, और अन्याय का साथ देने में भी अन्याय का दोष लगेगा, तुम्हारा भी अन्याय। आप समझ रहे हैं, अन्याय का अगर आप समर्थन करते हैं तो आपको भी जो है उसका दोष लगता है, है ना? अन्याय का विरोध नहीं करते हैं तो आपको भी दोष लगता है। तो यहां पर भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारे साथ ये लोग जो अन्याय कर रहे हैं तुम इसका विरोध नहीं करते हो, है ना, तो तुम्हारा सुधर्म भी नष्ट होगा, क्षत्रिय का सुधर्म नष्ट होगा और तुम्हारी कीर्ति भी नष्ट होगी और पाप लगेगा, है ना। अब कीर्ति नष्ट होगी, इसमें जो है प्रभुपाद तात्पर्य पूरा जो तात्पर्य है वो इस पर लिख रहे हैं कि कीर्ति अर्जुन की कीर्ति कितनी बड़ी है, है ना। तो प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य, अर्जुन विख्यात योद्धा थे जिन्होंने शिव आदि अनेक देवताओं से युद्ध करके यश अर्जित किया था। हाँ, शिकारी के वेश में शिव जी से युद्ध करके तथा उन्हें हराकर अर्जुन ने प्रसन्न किया था और वर के रूप में पाशुपत अस्त्र प्राप्त किया था। सभी लोग जानते थे कि वे एक महान योद्धा हैं, स्वयं द्रोणाचार्य ने उन्हें आशीष दिया था और एक विशेष अस्त्र प्रदान किया था जिससे वे अपने गुरु का भी वध कर सकते थे। द्रोणाचार्य आशीर्वाद दिया, इतना अर्जुन का इतना सम्मान, गुरु ने भी सम्मान किया, है ना, तो कितना मतलब अर्जुन का यश, अब वो यश जो है खत्म हो जाए। ये नहीं माना जाएगा कि अर्जुन जो है दया करके युद्ध नहीं कर रहे हैं, इनको मारना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वे लोग जो है युद्ध करने के लिए तैयार हैं। अर्जुन अगर युद्ध नहीं करेंगे तो ये नहीं माना जाएगा कि अर्जुन जो है इनके ऊपर दया कर रहे हैं। क्या माना जाएगा? कायर, डर करके, डर के कारण, है ना। और इतनी बड़ी जो है कीर्ति प्राप्त की अर्जुन ने शिवजी से युद्ध करना, शिवजी कौन है, प्रलय करने वाले, पूरी सृष्टि का प्रलय करने वाले शिव जी, उनके साथ युद्ध, उनकी बराबर का जो है अर्जुन को धरातल प्राप्त हुआ है, और गुरु को भी जो है मतलब हराने का भी जो है अर्जुन के पास शक्ति है। गुरु ने शुद्ध प्रमाण पत्र दे दिया, गुरु ने भी प्रमाण पत्र दे दिया, क्या दी डिसाइपल इज मोर क्वालिफाइड देन दी गुरु। जी अर्जुन को प्रमाण पत्र लेके सर्टिफिकेट दे दिया, द डिसाइपल इज मोर क्वालिफाइड देन हिज गुरु। और ऐसे में जो है अर्जुन अब युद्ध छोड़ेंगे तो क्या काम आना जाएगा। देखो आज अर्जुन जो है डर गया। अभी तक जितने भी युद्ध हुए अर्जुन है कभी भी युद्ध से अर्जुन ने मतलब मुंह नहीं मोड़ा है और हमेशा विजय प्राप्त की। और आज क्या माना जाएगा, डर गया अर्जुन, डर गया। देखो हमारी शक्ति कितनी, अर्जुन डर गया। तो ये जो है मतलब अर्जुन भाग गया हमसे डर करके, हमारी शक्ति देखो क्या है, वैसा करेंगे ना। तो ये जो है तो भगवान जो है जो बातें बता रहे हैं ये बड़ी व्यवहारिक बातें हैं जो कि अर्जुन नहीं सोच रहे हैं, अर्जुन नहीं सोच रहे हैं इस बात को। और भगवान जो बता रहे हैं भगवान की दृष्टि जो है दूर की है, अर्जुन की दृष्टि जो है इतनी दूर की नहीं। अब स्टोर संख्या 34, अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् संभावितस्य च कीर्तिर् मरणादतिरिच्यते। माता जी बोलिए,
लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है।
अकीर्तिम चापि भूतानि। अच्छा आप देखिए कीर्ति चली जाए तो अर्जुन सोचते हैं कि कीर्ति चली जाए कोई बात नहीं, अकीर्ति तो नहीं होगी। चलो कीर्ति चली जाए तो चली जाए, कोई अब कीर्ति तो नहीं करेगा ना भगवान की अकीर्ति है ना। इस तरह से भगवान अर्जुन को फंसा रहे हैं कि मतलब युद्ध अगर तुम नहीं करोगे तो मतलब क्या होगा। युद्ध अर्जुन युद्ध ना करने के पक्ष में कुछ सोच रहे हैं कि चलो युद्ध ना करूं तो काम चल जाएगा, भगवान के काम नहीं चलेगा है ना। अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम्। अव्ययाम का मतलब कभी समाप्त ना होने वाली अब कीर्ति। जैसे इस्कॉन के बारे में भी समाचार पत्रों में कई कई बार बड़ी मतलब निंदित बातें छापते हैं लेकिन कुछ समय के बाद फिर सब धुल जाता है ना, हो जाता है ना। बहुत सी बातें आई वे हरे कृष्ण वालों का, और कोई होता भी ऐसा कोई किसी भक्त ने कुछ निंदनीय कार्य कर दिया उसमें पूरा आंदोलन बदनाम हो जाता है ना। तो बड़ी मतलब निंदा की बातें आती हैं और बड़ी ये लज्जा की बात है, कलंक है मतलब लगता है हमारे इस आंदोलन को, लेकिन कुछ समय के बाद सब धुल जाता है। लेकिन अर्जुन के लिए भगवान के लिए वो नहीं तुम्हारा जो है धुलेगा, ये अब कीर्ति तुम्हारी नहीं धुलेगी कि आगे चल करके लोग भूल जाएं, हमेशा के लिए तुम्हारा जो है ये जो अब कीर्ति है ये बनी रहेगी। अब व्यायाम है ना, कथय संधि थी व्यायाम है। संभावित से चा कीर्तिर मरणा नदिरचिते, संभावित व्यक्ति के लिए अब कीर्ति मरण से ज्यादा बुरी है, मरने से ज्यादा बुरी है अब कीर्ति है ना। हम प्रभुपाद के तात्पर्य में देखेंगे प्रभुपाद क्या लिखते हैं। अब अर्जुन के मित्र तथा गुरु के रूप में भगवान कृष्ण अर्जुन को युद्ध से विमुख ना होने का अंतिम निर्णय देते हैं। वे कहते हैं अर्जुन यदि तुम युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व ही युद्ध भूमि छोड़ देते हो तो लोग तुम्हें कायर कहेंगे, और यदि तुम सोचते हो कि लोग गाली देते रहे किंतु तुम युद्ध भूमि से भागकर अपनी जान बचा लोगे तो मेरी सलाह है कि तुम्हें युद्ध में मर जाना ही श्रेयस्कर होगा। तो मतलब यहाँ जो समझने वाली बात है वो ये है कि अर्जुन तो मरना चाहते हैं। अर्जुन ने कहा भी है कि मैं युद्ध ना करूं यदि माम प्रतिकारम अशस्त्रम, और मैं शस्त्र भी छोड़ दूं और ये शस्त्र धारण करके मुझे मार दें, मेरी हत्या कर दें तो वो मेरे लिए कल्याण है। अशस्त्रम शस्त्र पाण यहा धात राष्ट्र रणि हनिस्तल में छे में तरम भवेत, ये मेरे लिए ज्यादा सुरक्षा है, इस मेरी ज्यादा सुरक्षा है कि मुझे पाप नहीं लगेगा। अर्जुन सोच रहे हैं इसमें मेरी ज्यादा सुरक्षा है कि ये मार दें। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं कि मरने से भी ज्यादा बुरा है क्या अब कीर्ति, अगर तुम युद्ध नहीं करोगे संभावित कीर्तिर मरणाद अतिरिचित। अच्छा आप श्लोक संख्या 35, भयाद्रणाद उपरतम मनस्यन्ते त्वाम महारथान येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। बोलो प्रभु जी। कोई
जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी है और इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे।
भयात ऋणात उपरतम मनसंते त्वाम महारथा, जितने महारथी लोग हैं वो तुमको क्या मानेंगे कि तुम भय से युद्ध से उपरत हुए हो, भय के कारण तुम युद्ध से उपरत हुए हो है? ये साम च तुम बहुमतो, जिनकी दृष्टि में तुम बहुमत हो, बहुमत का मतलब तुम्हें बहुमत प्राप्त हुआ है, जिनकी दृष्टि में तुम्हें बहुमत प्राप्त हुआ है क्या कि अर्जुन बहुत वीर है, अर्जुन जैसे वीर पृथ्वी में कोई नहीं। ये साम जो तुम बहुमतो भूत्वा बहुमत होकर के या शशि लाघवम तुच्छता को प्राप्त हो गए, लाघवम लाघवम का मतलब है लघुता को प्राप्त हो गए, तुम जो है तुच्छता को प्राप्त हो गए, तुम तुच्छ उनकी नजरों में तुच्छ बन जाओगे। तो प्रभुपाद आत्म लिखते हैं भगवान कृष्ण अर्जुन को अपना निर्णय सुना रहे हैं। तुम ये मत सोचो कि दुर्योधन कर्ण तथा अन्य समकालीन महारथी ये सोचेंगे कि तुमने अपने भाइयों तथा पितामह पर दया करके युद्ध भूमि छोड़ी है, ये तो यही सोचेंगे कि तुमने अपने प्राणों के भय से युद्ध भूमि छोड़ी है, इस प्रकार उनकी दृष्टि में तुम्हारे प्रति जो सम्मान है वो धूल में मिल जाएगा। श्लोक संख्या 36, अवाच्यवादांश बहून वदिष्यन्ति तवाहितां निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नुके। माताजी हिंदी में, कोई हिंदी में पढ़ो माता जी।
तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य को उपहास करेंगे, तुम्हारे लिए इससे दुखदायी और क्या होगा।
हाँ, सबसे ज्यादा अब जो है भगवान ने जो कारण बताया, सबसे बड़ा कारण युद्ध ना मतलब युद्ध है ना करने से कितना गलत परिणाम होगा वो क्या है, अवाच्यवादान से बहून वदिष्यन्ति तवाहिता, कि तुम्हारे जो शत्रु हैं, अहिता का मतलब है ईर्ष्यालु, जो तुमसे ईर्ष्या करते हैं उनको बहुत मौका मिलेगा क्या, अवाच्यवादान ऐसी बातें जो नहीं बोलनी चाहिए ऐसी बातें वे बोलेंगे है? वदिष्यन्ति तवाहिता, तुम्हारे जो शत्रु हैं है ना, निंदन्तस्तव सामर्थ्यम, तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा करते हुए, ततो दुख है तरम नुकिम, इससे बढ़कर के और दुख है क्या हो सकता है, ऐसी बातें बोलेंगे ना। इसमें तात्पर्य प्रभुपाद जो लिखते हैं, प्रारंभ में ही भगवान कृष्ण को अर्जुन के अयाचित दया भाव पर आश्चर्य हुआ था। अयाचित, अयाचित का मतलब नहीं नहीं अयाचित अयाचित नहीं
नहीं
नहीं याचित, जिसकी याचना नहीं हुई है, अयाचित दया भाव, ये सब थोड़ा कठिन है, अयाचित दया भाव कि जो ना याचना की जाए, नहीं नहीं सोचना नहीं मांगा, जिसकी मांग ना हो है? तो अर्जुन जो है दया कर रहे हैं है? उनके ऊपर जो दया नहीं मांग रहे हैं अर्जुन से, तो अजय आया से दया है, मैं आपके ऊपर दया कर रहा हूं या आप दया नहीं चाहते हैं, आप तो दया नहीं चाहते, मैं आपसे दया मांग रहा हूं, दया चाहता हूं, दया करो है ना, तब तो भाई याचित, मैं आपके ऊपर दया कर रहा हूँ, वो याचित दया कर रहा हूँ कि आप दया मांग रहे हैं मुझसे, दया चाहते हैं। और अयाचित दया, आप तो दया नहीं चाहते, कहते मेरे ऊपर दया मत करो, दिखाओ अपनी शक्ति, युद्ध करो मेरे से और मैं आपके ऊपर दया करूँ, तो वो दया नहीं मानी जाएगी, वो तो डर माना जाएगा कि मैं डर रहा हूँ और दिखा रहा हूँ कि मैं दया कर रहा हूँ, अयाचित दया। तो ये लोग जो शत्रु हैं तुम्हारे सामने खड़े हैं, तो ये तुमसे दया नहीं मांग रहे और तुम उनके ऊपर दया कर रहे हो, तो इसको कहते हैं अयाचित दया, अयाचित दया का भाव। अर्जुन के जो भाव दया की भावना है वो अयाचित है, कि जो मांगी नहीं गई याचित नहीं है, अयाचित दया भाव। पर आश्चर्य हुआ, मतलब किसको आश्चर्य हुआ, भगवान कृष्ण को, अर्जुन के अयाचित दया भाव पर आश्चर्य हुआ, उन्होंने इस दया भाव को अनार्योचित बताया था, अनार्यों के लिए उचित है ये, अनार्योचित, ऐसे दया भाव अनार्यों के लिए उचित है। अनारी मतलब हम लोग सामान्य भाषा में बोलते हैं अनाड़ी, अनाड़ी जिसको कि सही गलत का सही अंदाजा नहीं होता है ना, उचित अनुचित का सही ज्ञान नहीं होता है, अनाड़ी व्यक्ति, तो जो अनाड़ी व्यक्ति के लिए ये उचित है। जो अनाड़ी व्यक्ति होता है, जो परिणाम पर विचार नहीं करता है और ऐसे काम करता है बिना सोचे समझे, अनाड़ी कहलाता है, अनार्य है ना, अनार्य उनके लिए उचित है ऐसे दया भावना। जो आर्य होते हैं वो दया उसके ऊपर करते हैं जो दया मांगे, और जो दया ना मांगे है ना उसके ऊपर दया नहीं करते है ना, वो नाराज होगा, मैं आपके ऊपर दया करूंगा आप दया नहीं मांग रहे हैं तो आप नाराज होंगे मेरे ऊपर तो वे निंदा करेंगे, तुम दया करोगे उनके ऊपर तो तुम्हारी निंदा करेंगे, क्यों दया कर रहे हैं। जैसे कोई चीज आप नहीं चाहते हो मैं आपको दूं, है ना, आप नहीं चाहते मैं आपको ये दूं, लो तो आप जो है नाराज होगे ना कि मुझे क्यों दे रहे हैं, मैंने नहीं चाहता है। जैसे दया आप नहीं मांग रहे, मैं आपको दया दे रहा हूं, तो निंदा करेंगे है ना, तो यहाँ निंदा है अनार्य। अब उन्होंने विस्तार से अर्जुन के तथाकथित दया भाव के विरुद्ध कहे गए अपने वचनों को सिद्ध कर दिया है। इसमें जो मतलब जो अवाच्यवादन, मतलब जो नहीं कहना चाहिए, बड़े कड़वे वचन जो बोलते थे, दुर्योधन ने बोले हैं, दुशासन ने बोले हैं, इस किताब में हमने जो है उनका उदाहरण दिया है, तो इसमें निकालना द्वितीय खंड उत्तरार्ध की किताब में यही है क्या, द्वितीय खंड उत्तरार्ध 36वां श्लोक में अच्छा वो होगा पूर्वार्ध में होगा, पूर्वार्ध में हमने 38 तक किया है, हाँ ठीक है 36वां इसमें होगा, हाँ ठीक, हाँ ये वाला है। तो कैसे मतलब कटु वचन, देखिए दुर्योधन ने जिस समय छल पूर्वक दुर्योधन ने पांडवों को तथा द्रौपदी को जू में जीत लिया, उस समय उसने विदुर जी को आज्ञा दी, विदुर तुम जाकर पांडवों की प्रियतमा सुंदरी द्रौपदी को शीघ्र ले आओ, वो अभागिनी यहां आकर हमारे महल में झाड़ू लगाए और दासियों के साथ रहे, ऐसे शब्द बोले। जब विदुर जी ने दुर्योधन की इस बात का विरोध किया तो उसने अपने भाई दुशासन को आज्ञा दी कि वो बलपूर्वक द्रौपदी को भरी सभा में पकड़ लाए। दुर्योधन के शब्द बहुत कैसे थे, कटु थे, अवाच, जो बोले नहीं जाए, बोलना नहीं चाहिए ऐसे। फिर दुशासन ने क्या किया, जिस समय दुशासन को दुर्योधन की आज्ञा प्राप्त हुई तो द्रौपदी के निकट जाकर इस प्रकार कटु शब्द बोला, कृष्ण चल तुझे हमने जीत लिया है, अब लज्जा छोड़कर दुर्योधन को देख, सुंदरी हमने तुझे पा लिया है, अब सभा में चल और कौरवों की सेवा कर। जब द्रौपदी ने अत्यंत दुख के साथ इस बात का विरोध किया तो दुशासन ने द्रौपदी की बात पर कुछ ध्यान न देकर केशों को और भी जोर से पकड़ा और बोला, द्रौपदी की बेटी तू रजस्वला हो या एक वस्त्रा, भले ही तू नंगी हो, हमने तुझे जुए में जीता है, तू हमारी दासी है, अब तुझे नीच स्त्रियों के समान हमारे दासियों में रहना पड़ेगा। ये कैसी बात है ना, भगवान के इससे बढ़कर के दुख और क्या होगा। सिर कट जाए छत्री का, है ना, उसमें इतना कष्ट नहीं होता है ना। ऐसा कहकर वो द्रौपदी को भरी सभा में घसीट लाया और उदासी उदासी कहकर हटाकर हंसने लगा। और सब पांडवों को जैसा दुख हुआ वैसा संपूर्ण राज्य के छिन जाने पर भी नहीं हुआ था। महाभारत के युद्ध में जब भीमसेन ने दुशासन को पराजित करके उसे पटक करके पूछा कि उसने किस हाथ से द्रौपदी के पवित्र केसों को खींचा था, अब पटक दिया, अभी देखो मरने वाला है, लेकिन तभी वो उल्टी बात ही बोल रहा है। मतलब ऐसे दुष्ट होते हैं मरते मरते भी, अभी दुशासन को पटक दिया, अब भीमसेन के हाथ में उसकी जान है। और भीमसेन क्या पूछ रहे हैं कि देखा तेरा कौन सा हाथ है जिन हाथों से तूने द्रौपदी के बाल खींचे थे। उस समय मरते हुए भी उस दुष्ट ने बड़े आवेश में आकर कहा, भीमसेन, उस समय जबकि प्रधान प्रधान कौरव सभी सभासद और तुम लोग भी बैठे बैठे देख रहे थे, मैंने इसी बहने हाथ से द्रौपदी के केस खींचे थे। उस समय भी अपना हाथ दिखा रहा है। ऐसी बात सुनकर भीमसेन ने क्रोध पूर्वक उसी दाहिने भुजा उखाड़ डाली। उखाड़ना कितना कष्टकारक होता है, है ना, काटने में तो उतना नहीं है लेकिन उखाड़ना संभव नहीं है, कोई उखाड़ भी नहीं सकता अपनी शक्ति से हाथ को, लेकिन भीमसेन के पास ऐसी शक्ति थी, उखाड़ दी, भुजा उखाड़ दी। कर्ण देखिए, ये सब अहित हैं, वो भगवान के ना तुम्हारे अहित हैं, ऐसी बातें बोलेंगे। कर्ण, जिस समय दुशासन भरी सभा में द्रौपदी का अपमान कर रहा था उस समय कर्ण प्रसन्नता से दुशासन के व्यवहार का समर्थन कर रहा था। कर्ण बहुत दुष्ट था, कर्ण की अगर प्रशंसा की जाती है ना तो उचित नहीं है। हालांकि कर्ण में कुछ गुण है लेकिन असत संग से वो सब गुण जो है क्या होते हैं, दूषित हो जाते हैं। असत संग त्याग ए वैष्णव आचार, कितने अच्छे गुण हो असत संग में सब बेकार हो जाता है, सब है ना दूषित हो जाते हैं। तो दुशासन के व्यवहार का समर्थन कर रहा था। उस समय दुर्योधन के एक भाई विकर्ण ने धर्म पर विचार करते हुए द्रौपदी के पक्ष में दुशासन का विरोध किया तो कर्ण ने उसे छोटा समझकर डांट दिया और चुप करा दिया और इस प्रकार के कटु वचन कहे, द्रौपदी 5 पतियों की स्त्री होने के कारण निस्संदेह वेश्या है, इसलिए मेरी समझ से एक वस्त्र अथवा वस्त्रहीना होने पर भी सभा में लाना अनुचित नहीं है। फिर उसने दुशासन की ओर देखकर कहा, दुशासन विकर्ण की बातों पर मत ध्यान दो और द्रौपदी और पांडवों के सारे वस्त्र उतार लो। कितने कड़वे वचन बोले ना। तो इस तरह से जो है भगवान जो बता रहे हैं कि ये जो है तुम्हारे जो ईर्ष्यालु लोग हैं ये ऐसी बातें बोलेंगे, इससे बढ़कर के और दुख क्या हो सकता है। श्लोक संख्या 37, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम् जित्वा वा भोक्ष्यसे महि तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। अब किसकी बारी है,
तुलसी पुत्र, यदि तुम युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे या यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे, अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो।
तो भगवान ने अब जो है निर्णय दिया, क्या हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम्, अगर मर जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे। अभी मतलब समझो कि गीता की शिक्षा शुरू नहीं हुई है, अभी तो केवल युद्ध के पक्ष में भगवान जो है मतलब एक निर्णय दे रहे हैं कि अगर तुम मरोगे तो स्वर्ग की प्राप्ति है और जित्वा भोक्ष से महिम, अगर जीतोगे तो पृथ्वी को भोगोगे। तस्माद उत्तिष्ठ कौन्ते युद्धाय कृत निश्चय, इसलिए हे कुंती पुत्र खड़े हो जाओ युद्ध के लिए निश्चय करके, युद्ध के लिए निश्चय करके खड़े हो जाओ। तात्पर्य प्रभु लिखते हैं, यदि अर्जुन के पक्ष में विजय निश्चित ना थी फिर भी उन्हें युद्ध करना था, क्योंकि यदि वे युद्ध में मारे भी गए तो वे स्वर्ग लोक को जाएंगे। भगवान जो बात कर रहे हैं कि विजय मतलब यहाँ प्रभु कह रहे हैं विजय निश्चित नहीं थी, लेकिन विजय तो निश्चित है, भगवान जिनके पक्ष में है तो विजय तो निश्चित है, लेकिन एक विचार भगवान रख रहे हैं, एक विचार रख रहे हैं भगवान। आगे चल करके तो भगवान अपने विश्व में बताते हैं कि सब मेरे द्वारा मारे गए हैं और तुम वो क्या है कि उत्तिष्ठ यशो लभस्व तस्मा तुम उत्तिष्ठ यशो लभस्व जितना शत्रु भूमचुराजम समृद्धम, तुम इसलिए तुम उठो खड़े हो और यश प्राप्त करो। जितना शत्रु भूमचुराजम समृद्धम, तो भगवान तो वो आगे चल करके बताएंगे। इन्हें अभी भगवान नीति बता रहे हैं कि नीति क्या है ना। नीति ये है कि अगर तुम मारे गए तो स्वर्ग की प्राप्ति करोगे, और अगर जीत गए तो पृथ्वी को भोगोगे। तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। हाँ, इसलिए अर्जुन तो युद्ध के लिए तुम निश्चय करके खड़े हो जाओ। अच्छा, श्लोक संख्या 38। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापं अवाप्स्यसि। माताजी, अब भगवान जो है क्या कह रहे हैं, सुख दुखे समय कृत्वा, सुख दुख को समान समझ करके, है ना। क्योंकि पिछले श्लोक में भगवान ने मतलब सुखी की बात बताई थी कि मरने पर स्वर्ग का सुख मिलेगा, और अगर तुम जीते या तो तुम मरो या युद्ध को जीतो, मतलब छोड़ना नहीं, युद्ध को छोड़ना नहीं है। निश्चय क्या है, है? कि मरना है या तो मरना है या जीतना है, विजय प्राप्त करना है, है ना। और दोनों में क्या है, सुख है। अगर मर गए तो स्वर्ग का सुख मिलेगा, और जीत गए तो पृथ्वी का राज्य का सुख मिलेगा। लेकिन अब भगवान कह रहे हैं सुख दुख समान करके। अब ये जो है गीता का, अब जो है मतलब, है ना, अब ये शिक्षा भगवान जो दे रहे हैं ये है गीता की शिक्षा। शुरू हुई भगवान क्या, सुख दुखे समय कृत्वा, सुख दुख को समान समझ करके, मतलब स्वर्ग का सुख हो या पृथ्वी का सुख हो, ये मुझे सुख नहीं चाहिए, है ना। सुख दुख को समान करके लाभ अलाभ हो, लाभ और हानि, जय और पराजय को समान समझ करके, तथो तो युद्धाय युज्यस्व, अब युद्ध के लिए युद्ध करो। युद्धाय युज्यस्व, युद्ध के लिए युद्ध करो, है नैवं पापं अवाप्स्यसि, तो इसमें तुम्हें पाप नहीं लगेगा, है ना। तो ये बात सही है, अगर अगर तुम जीते युद्ध में जीते कि तुम जो है चाहते हो विजय पाना चाहते हो, युद्ध में अगर तुम जीत गए तो पाप लगेगा। अगर तुम युद्ध में मतलब तुमने राज्य भोगने के लिए अगर तुम युद्ध कर रहे हो तो और तुम जीत गए तो तुम्हें पाप लगेगा। लेकिन अगर तुम जो है इस प्रकार की भावना से अगर तुम युद्ध करते हो तो तुम्हें फिर पाप नहीं लगेगा। यहाँ भगवान अब इस भावना की बता रहे, अगर युद्ध में तुम मारे गए तब तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, तब तो पाप नहीं लगेगा, युद्ध में तुम मारे गए तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी। लेकिन अगर तुम युद्ध में जीत गए और इस भावना से तुमने जो है युद्ध किया है कि तुमको राज्य भोगना है, तो तुम्हें पाप भी लगेगा, है ना। लेकिन अब भगवान कह रहे हैं कि तुम्हें ऐसे में पाप नहीं लगेगा, है ना। अब हम प्रभुपाद के तात्पर्य से पढ़ेंगे। अब भगवान कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं कि अर्जुन को युद्ध के लिए युद्ध करना चाहिए, क्योंकि ये उनकी इच्छा है। कृष्ण भावना मृत्यु कार्यों में सुख या दुख, हानि या लाभ, जय या पराजय को कोई महत्व नहीं दिया जाता, है ना। हाँ, ये जो है मतलब क्या है कि आदेश का पालन, कर्तव्य का पालन, यहाँ जो भगवान बता रहे हैं आदेश का पालन, कर्तव्य का पालन, ये इतना महत्वपूर्ण है कि अगर पता भी है कि हम हार जाएंगे और हम मारे जाएंगे तो भी उसको करना है। यहाँ पर भगवान जो है जो चेतना बता रहे हैं, किस चेतना में हमें कार्य करना है, वो ये चेतना है। जैसे कि जटायु जब सीता का अपहरण हुआ तो जटायु ने रावण का विरोध किया, तो जटायु के पास उतनी शक्ति नहीं थी, है, और जटायु को पता था कि वो मारे जाएंगे, लेकिन उन्होंने कर्तव्य का पालन किया और मारे गए, है ना। तो यहाँ पर जो है, जो मुख्य जो बात है वो ये है, युद्धा युज्यस्व, युद्ध के लिए युद्ध करो, युद्ध करना अपना कर्तव्य है, हैं? मरते दम तक युद्ध करना है। तो जटायु के जो है मतलब पंख काट दिए रावण ने ना, फिर भी अंतिम सांस तक वो युद्ध करते रहे, है ना। यहाँ पर भगवान जी बता रहे हैं, तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं, कृष्ण भावनामृत कार्यों में सुख या दुख, हानि या लाभ, जय या पराजय को कोई महत्व नहीं दिया जाता। दिव्य चेतना तो यही होगी कि हर कार्य कृष्ण के निमित्त किया जाए, अतः भौतिक कार्यों का कोई बंधन नहीं होता, कोई फल नहीं होता, है ना। तो यहाँ पर जो है भगवान जो बता रहे हैं कि पाप नहीं लगेगा, तो पाप से कोई व्यक्ति तभी पूरी तरह छोड़ सकता है जब वो कृष्ण की शरण ले। तो यहाँ पर जो है स्पष्ट रूप तो नहीं बताया गया, लेकिन संकेत यही है कि जब हम कृष्ण की पूरी तरह से शरण लेते हैं और कृष्ण को प्रसन्न करने के ही लिए कार्य करते हैं, तभी हम पापों से छोड़ सकते हैं, नहीं तो वो कुछ ना कुछ जो है पाप लगता ही है, चाहे थोड़ा लगे लेकिन पाप लगता ही है। सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणम व्रज। तो भगवान ने जो है गीता के अंत में जो बात बताई है, तो वो बात प्रभुपाद जो है प्रत्येक श्लोक में वो डाल रहे हैं, क्योंकि हमें उसी दृष्टि से समझना है ना, जो भगवान यहाँ स्पष्ट नहीं बता रहे हैं, लेकिन जो बात है रहस्य है वो हर श्लोक में यही रहस्य है, है ना। अच्छा, अभी श्लोक संख्या 39, मेरी बेसी बोली, ईशा ते भीता सांखे बुद्धिर्योगे तो माम श्रृणु, बुद्धिया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। किसकी बारी पुरुष?
यहाँ मैंने वैश्लेषिक अध्ययन सांख्य द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है, अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, उसे सुनो। हे प्रतापुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो।
तो भगवान क्या कह रहे हैं, ऐसा ते भीता सांख्य बुद्धिर, तो ये जो बुद्धि है ये मैंने तुम्हें अभी तक जो बताई थी वो सांख्य के अनुसार बतलाई थी। तो सांख्य का मतलब क्या है, संख्या, संख्या के अनुसार बतलाई थी, है ना। तो संख्या का मतलब क्या है कि भगवान ने शरीर और आत्मा के बीच में अंतर बतलाया था, तो ये भी एक प्रकार की संख्या है, सांख्य है। तो गीता में भगवान ने जो सांख्य बतलाया है वो बड़ा सरल बताया है कि दो चीजों में अंतर बताया है, शरीर में और आत्मा में, तो ये भी एक संख्या हो गई ना, है ना। तो जब हम शरीर और आत्मा को एक मानते हैं तो फिर वो क्या हो गई, वो कोई संख्या ही नहीं है, हम मतलब अंतर नहीं देख रहे ना शरीर में और आत्मा में। तो ये जो है मतलब क्या है कि कोई संख्या ही नहीं है, आप संख्या ही नहीं मतलब कर रहे हैं, गिनती ही नहीं कर रहे हैं कि कितनी मतलब अलग अलग चीजें हैं, तो शरीर में और आत्मा में। तो ये सांख्य जो गीता में भगवान ने दिया है वो श्लोक संख्या 30 तक दिया है, 11वें श्लोक से लेके श्लोक संख्या 30 तक भगवान ने सांख्य का वर्णन किया है। तो सांख्य बहुत सरल भगवान ने मतलब कर दिया गीता में, तो वो क्या है, शरीर में और आत्मा में भेद है ना। तो भगवान ने अब यहाँ कह रहे हैं, ऐसा ते भीता सांख्य बुद्धिर, ये बुद्धि जो है मैंने तुम्हें अभी तक सांख्य में बतलाई थी, है जिसके अनुसार तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। भगवान ने बार बार कहा कि तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, है ना, आत्मा जो है नष्ट नहीं होता है और शरीर नष्ट होता है, तो तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। तो ये तो मैंने तुम्हें सांख्य में बतलाई, बुद्धिर योगे तुम आम सुनो, अब इसको योग में सुनो, अब इसी बुद्धि को तुम योग में सुनो, है ना। और योग का मतलब क्या है, जिसको आप मतलब कर्म योग कहें या फिर उसी को ही भक्ति योग, वो कर्म योग जो है भक्ति योग में जाता है, भक्ति योग की दिशा में जाता है, उस योग की दिशा में। इस बुद्धि को तुम सुनो, बुद्धि आयुक्त हो या अपार्थ, जिस बुद्धि से युक्त हो करके हे अर्जुन कर्म बंधन प्रयास जी, कर्म के बंधन को तुम काटोगे। प्रयास से माने कर्म के बंधन पर प्रहार करोगे, कर्म के बंधन पर तुम प्रहार करोगे, प्रहार शशि है तुम नष्ट करोगे, है ना, कर्म के बंधन को तुम नष्ट करोगे, है ना। तो इसमें प्रभुपाद तात्पर्य लिखते हैं, वैदिक कोश निरुक्ति के अनुसार सांख्य का अर्थ है विस्तार से वस्तुओं का वर्णन करने वाला, तथा सांख्य उस दर्शन के लिए प्रयुक्त मिलता है जो आत्मा की वास्तविक प्रकृति का वर्णन करता है, और योग का अर्थ है इंद्रियों का निग्रह है। अर्जुन का युद्ध ना करने का प्रस्ताव इंद्रिय तृप्ति पर आधारित था, वे अपने प्रधान कर्तव्य को भुलाकर युद्ध से दूर रहना चाहते थे। अब यहाँ पर जो प्रभुपाद बता रहे हैं कि अर्जुन का युद्ध ना करने का प्रस्ताव इंद्रिय तृप्ति पर आधारित था, इसको कैसे समझें? अर्जुन का जो युद्ध करने ना करने का प्रस्ताव क्या इंद्रिय तृप्ति पर आधारित था? अर्जुन तो बहुत बड़ा त्याग कर रहे हैं,
अर्जुन लोग इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं।
हाँ, क्योंकि अर्जुन तो वैसे देखा जाए तो अर्जुन तो इंद्रिय तृप्ति का बिल्कुल त्याग कर रहे हैं, हैं कि हम इनको मार करके इंद्रिय तृप्ति नहीं करना चाहते, हम राज इन्हें भोगना चाहते, इनके खून से सने हुए भोगों को हम नहीं भोगना चाहते, और हम जीवन भर भिक्षा से जीवन निर्वाह करें। अर्जुन तो ये कह रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रभुपाद जो लिख रहे हैं कि अर्जुन का युद्ध ना करने का प्रस्ताव इंद्रिय तृप्ति पर आधारित, इसको कैसे समझें? वो लोग इंद्रिय तृप्ति करेंगे तो उनकी इंद्रिय तृप्ति भी जो है वो अपनी इंद्रिय तृप्ति का विस्तार हो गया, इसको एक्सटेंडेड सेंस ग्रेटिफिकेशन कहते हैं, है ना, अपनी विस्तृत इंद्रिय तृप्ति। जैसे गांधी जी का सिद्धांत है ना, तो हमारे देशवासियों को इंद्रिय तृप्ति प्राप्त हो, तो उन्होंने अपनी इंद्रिय तृप्ति का त्याग किया, बहुत बड़ा त्याग किया, अपनी इंद्रिय तृप्ति का त्याग किया है, और किस लिए? देशवासियों को इंद्रिय तृप्ति प्राप्त हो। तो ये भी कृष्ण भावनामृत नहीं है, जबकि बहुत बड़ा त्याग माना जाता है कि बहुत बड़ा त्याग किया उन्होंने, अपने इंद्रिय तृप्ति का त्याग किया किसके लिए? अपने कोई अपने घर परिवार की इंद्रिय तृप्ति के लिए अपने इंद्रिय तृप्ति का त्याग करता है, कोई व्यक्ति अपने समाज की या कभी जो है अपने देश की इंद्रिय तृप्ति के लिए अपने इंद्रिय तृप्ति का त्याग करता है, या मानवता की सेवा के लिए इंद्रिय तृप्ति का त्याग करता है कि सब मनुष्यों को जो इंद्रिय तृप्ति की सुविधाएं प्राप्त हों। लेकिन ये भी सब सब क्या है, अपनी ही इंद्रिय तृप्ति है, अपनी इंद्रिय तृप्ति का विस्तार है, है ना। तो ये प्रशंसनीय नहीं है, भगवान की दृष्टि में ये प्रशंसा की बात नहीं है, इंद्रिय तृप्ति पर आधारित है, यानी कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति नहीं है इसमें, है ना। तो जब हम कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य नहीं करते हैं, तब तक ये सब जो है क्या है, भौतिक धरातल पर कार्य होते हैं। वे अपने प्रधान कर्तव्य को भुलाकर युद्ध से दूर रहना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने ये सोचा कि धृतराष्ट्र के पुत्रों अर्थात अपने बंधु बांधवों को परास्त करके राज्य भोग करने की अपेक्षा अपने संबंधियों तथा सुजनों को ना मारकर वे अधिक सुखी रहेंगे। दोनों ही प्रकार से मूल सिद्धांत तो इंद्रिय तृप्ति ही थी, है ना। तो ये जो है मतलब तो यहाँ पर जो भगवान योग बतला रहे हैं, तो कि इस योग में तुम इस बुद्धि को सुनो, तो योग का मतलब क्या है कि कृष्ण के साथ में हमें अपने को जोड़ना है, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करना है। अब श्लोक संख्या 40 नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। माता जी,
इस प्रयास में ना तो हानि होती है ना ही त्रास, अपितु इस पद पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है।
बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है ये, भगवान क्या कह रहे हैं, ना यह अभिक्रम नाशोस्ती, इसके अभिक्रम का नाश नहीं है, यानी शुरुआत जो आपने की है वो नष्ट नहीं होता, आप इसका जो है जो शुरुआत करते हैं भक्ति में, अगर आप जो है प्रारंभ करते हैं भक्ति का, तो प्रारंभ में कभी नाश नहीं होता है ना। और प्रत्यवायु न विद्यते, प्रत्यवायु का मतलब है कि इसका उल्टा परिणाम भी नहीं होता, उल्टा परिणाम भी नहीं होता। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयः, थोड़ा भी अगर आपने इसका आचरण किया इस धर्म का, तो महान भय से रक्षा होती है। तो तात्पर्य प्रभुपाद का बहुत बढ़िया और बड़ा जो है विस्तृत है इस श्लोक का तात्पर्य। तो अब हमारे पास तो समय नहीं है, लेकिन बहुत ये जो है इसमें गहरी बात है। सबसे पहली बात है कि भगवान कह रहे हैं कि अभिक्रम का नाश नहीं है, कि मतलब आपने जो शुरू किया, अब शुरू किया और पूरा नहीं हुआ है। जैसे कि आप कोई परीक्षा देते हैं है? तो एक साल तक आपने मान लो पढ़ाई की है ना, थोड़ी पढ़ाई की, 10% पढ़ाई की, 20% पढ़ाई की, और फिर परीक्षा में आप पास नहीं हुए, फेल हो गए, तो क्या होता है कि पूरा का पूरा जो है पढ़ाई आपकी बेकार हो गई है कि नहीं। फिर से आपको उसी में जाना पड़ेगा, शुरू से फिर वही गिनती गिनने पड़ेगी शुरू से। लेकिन इसमें क्या है भक्ति में, कि आपने जितनी भी भक्ति की है, 1%, 2%, 5%, अभी शरीर छोड़ गया, तो भगवान के जो है मतलब खाते में वो आपकी जो भक्ति है वो सुरक्षित रहेगी। अगले जन्म में आप उस जितनी भक्ति आपने की थी 1%, 2%, वो आपको मिल जाएगी, और फिर अगले जन्म में आप उससे आगे से शुरू करेंगे। तो इसमें कितना मतलब अच्छी व्यवस्था है भगवान की है ना। हरि बोल। किसी भी मतलब ऐसे बोर्ड में जो परीक्षा का बोर्ड होता है, यहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं है कि आपने इस साल जो है जितने नंबर पाए हैं तो इतने नंबर आपके सुरक्षित रहें, और आगे करोगे तो और नंबर पाएंगे, फिर जोड़ते जाएं आपके नंबर, ये नहीं होता, इतना नहीं होता। तो आपके सब नंबर बेकार हो गए अगर आपने पास मार्क नहीं लाए। मान लो आप 10 नंबर में पास होते हैं और आपके आए 30 नंबर, तो 30 नंबर बेकार हो गए, कुछ फायदा नहीं। लेकिन भगवान के खाते में वो सब जो है मतलब सुरक्षित होते हैं और जुड़ते रहते हैं है ना। तो नेहा विक्रम ना सोचती का ये मतलब है ना। ठीक है, तो अभी समय तो हो गया, अब एक प्रश्न कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, आप बोलिए। हाँ जी, हाँ, अगला जन्म, अगले जन्म का तात्पर्य क्या है? अगला जन्म ये है, जैसे मान लो मनुष्य का भी जन्म नहीं मिला, आपको पशु पक्षी का भी जन्म मिला, तो भी आपकी चेतना जो है चेतना में वो रहेगा। जैसे कि भरत महाराज थे, तो भरत महाराज को जो है अगला जन्म हरण का मिल गया, आप समझे, हरण का मिल गया, तो हरण के शरीर में भी वो उनकी चेतना रही है, और चूंकि उन्होंने अभ्यास किया था भक्ति का, तो उस भक्ति का जो अभ्यास के कारण उनकी चेतना वो रही, और जो जीवन का लक्ष्य है उनका जो है बदला नहीं, तो हरण के शरीर में भी वो हरणों का संग नहीं करते थे। अब वो उस तरह से तो तपस्या नहीं कर सकते थे जो मनुष्य के शरीर में कर रहे थे, हरण के शरीर में भी वो जो है मतलब इंद्रित नहीं करते थे, हरणों के संग में नहीं रहते थे, सूखी घास खा करके रहना और जल में खड़े रहना, और उस समय जो शरीर छोड़ा उन्होंने, तो फिर उनको ब्राह्मण का शरीर प्राप्त हुआ। तो कहने का मतलब यह है कि आपकी जो जितनी चेतना शुद्ध हुई है, तो उतनी शुद्धि जो है आपको अगले जीवन में मिल जाएगी उस चेतना में। ठीक है ना, बढ़ना समय तो है नहीं। अच्छा जी, आप बोलिए।
उसमें स्वधर्म के बारे में भगवान बताते हैं अर्जुन को, कि उस टाइम के और उस जगह के बारे में कि स्वधर्म कैसा होता है। आज के टाइम के लिए स्वधर्म की परिभाषा क्या होगी लोगों को बताने के लिए, मतलब उन आज के टाइम के लिए धर्म की परिभाषा क्या होगी?
ऐसा है कि ये तो विषय काफ़ी गहरा है, तो भगवान तो अभी तो हम जो है मतलब इतनी चर्चा नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तो ये नहीं है कि अर्जुन जो है क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय के रूप में जो ऐसी स्थिति में आ गए हैं, ऐसी स्थिति में अर्जुन को युद्ध करना है, है ना। अब ये जो विषय है वो बहुत लंबा है कि हम कैसी स्थिति में हमें क्या करना है, और इसके लिए आपको हरे कृष्ण मंत्र का जप करना है, ठीक है ना। तो भगवान जो है आपको अंदर से भी ऐसी प्रेरणा देंगे, ऐसी जागृति देंगे, और फिर शास्त्र हैं, साधु हैं, आचार्य, उनसे आपको संपर्क करना है, ठीक है ना। आपका प्रश्न है,
कमेंट थोड़ा बोलना था मैंने। आपने प्रभु जी जैसे अभी श्लोक कंटिन्यू क्रम से समझाया, इस तरह से अच्छा भगवत गीता कोई समझाने वाले हमने इससे पहले कभी नहीं सुना था। और प्रभु जी के मतलब मैं सभी लोगों को बता रहा हूँ कि प्रभु जी की जैसे ये किताब है श्री भगवान ने कहा, इसका जो हम मतलब हैदराबाद में रहते हैं और वहाँ पर सेंटर में इसका अध्ययन भी करते हैं क्रम से, तो श्लोकों को इतने अच्छे तरीके से समझाने वाला पूरे स्कॉल में शायद ही कोई मतलब बिरला ही कोई होगा ऐसे फिर समझा सकता। प्रभु जी बहुत अच्छे ढंग से समझाते हैं और इतने गहराई से और इतने मर्म समझाते हैं श्लोकों के कि आप बहुत इजी से भगवद गीता समझ सकते हैं। और आज भी प्रभु जी ने एक क्लास में से 10 लोग इतने अच्छे से समझाया, जिससे हमको मतलब जो टॉपिक है उस पर बहुत गहराई से विचार आया है।